एकत्र फाउंडेशन प्रस्तुत करता है ज्ञान गोष्ठी, दुनिया के बेहतरीन विचारों और विचारकों का सार अब हमारी भाषा में। ये ऑडियो सारांश एकत्र एआई की मदद से तैयार किया गया है।
परिचय।
आज हम बात करने वाले हैं ग्लेनन डॉयल की 2016 में आई एक बहुत ही चर्चित किताब लव वॉरियर पर। ये असल में उनका संस्मरण है।
जी हाँ, ये एक संस्मरण है और इसने पर्सनल ग्रोथ, स्पिरिचुअलिटी और खासकर महिलाओं के सेल्फ हेल्प जॉनर में मतलब काफी हलचल मचाई थी।
ग्लेनन डॉयल के बारे में थोड़ा बताएं, मतलब कौन है वो?
ग्लेनन डॉयल जन्म 1976, एक अमेरिकी लेखिका हैं, एक्टिविस्ट भी हैं और एक जानी मानी वक्ता भी। उन्होंने टुगेदर राइजिंग नाम का एक नॉन प्रॉफिट संगठन भी शुरू किया है जो काफी प्रभावशाली है।
अच्छा,
लेकिन उनकी पहचान यहीं खत्म नहीं होती। वो एक माँ हैं, एक पूर्व पत्नी है और ये भूमिकाएं उनकी कहानी और इस किताब लव वॉरियर के लिए बहुत अहम है।
और इस किताब में ऐसा क्या खास है, मतलब इसका हुक क्या है?
देखिए, ये किताब सिर्फ शादी में हुई बेवफाई से उबरने के बारे में नहीं है, वो तो एक हिस्सा है। असल बात यह है कि ये कहानी है एक ऐसे जीवन के ढांचे को तोड़ने की जो पूरी तरह दिखावे पर, दूसरों की उम्मीदों पर बना था और फिर सच्चाई की जमीन पर बहुत दर्द सहते हुए अपनी जिंदगी को दोबारा बिल्कुल नए सिरे से बनाने की, ये उसकी कहानी है।
सुनने में काफी इंटेंस लग रहा
है भी, डॉयल ने अपने लगभग टूट चुके रिश्ते के मलबे से ना सिर्फ अपने रिश्ते को समझने की कोशिश की बल्कि अपनी खुद की पहचान को फिर से गढ़ा। और ये किताब एक ऐसे समय पर आई जब समाज में खासकर महिलाएं शादी, मातृत्व, त्याग, इन सब पारंपरिक विचारों पर सवाल उठा रही थीं।
हाँ, वो एक दौर था जब ये बातें सतह पर आ रही थीं।
बिल्कुल, और डॉयल ने हिम्मत दिखाई। वो परफेक्ट परिवार का जो मुखौटा होता है ना, उसके पीछे की उलझी हुई कच्ची असली सच्चाई को सामने रखने की, और ये बात लाखों पाठकों के साथ कनेक्ट कर गई।
तो ये सिर्फ उनकी कहानी नहीं रही?
नहीं, बिल्कुल नहीं, ये उन बहुत सी महिलाओं के लिए एक तरह का मैनिफेस्टो बन गई जो समाज के बनाए दायरों से निकलकर अपने असली स्व को खोजना चाहती थीं, उसे पाना चाहती थीं।
ये दिखाती है कि कैसे वो अपने ब्लॉग मॉमस्ट्री, जो बहुत पॉपुलर था, कि लेखिका से,
हाँ, मॉमस्ट्री से
अपनी अंदरूनी सच्चाई के लिए लड़ने वाली एक लव वॉरियर, एक प्रेम योद्धा बनी।
एग्जैक्टली, और किताब का असली जोर, जैसा मैंने कहा, बेवफाई के डिटेल्स पर नहीं है बल्कि उन अदृश्य पिंजरों पर है जो हम सब जाने अनजाने अपने लिए बना लेते हैं।
कैसे पिंजरे?
जैसे समाज की उम्मीदें, कोई नशा या लत, डर। और फिर किताब इस बारे में है कि इन पिंजरों को तोड़कर एक सच्चे प्रामाणिक जीवन में कदम रखने के लिए कितना साहस चाहिए होता है।
और ओपराज बुक क्लब में चुने जाने से तो इसकी रीच और बढ़ गई होगी।
हाँ, उससे तो इसे बहुत ज्यादा पहचान मिली।
तो चलिए, ग्लेनन डॉयल की इस असाधारण यात्रा को शुरू से समझने की कोशिश करते हैं। उनकी कहानी कहाँ से शुरू होती है?
कालानुक्रमिक यात्रा।
जेनन का बचपन वर्जीनिया के बर्क शहर में बीता, जो एक काफी समृद्ध अपस्केल उपनगरीय इलाका माना जाता है। बाहर से देखें तो सब कुछ परफेक्ट था, एक कामयाब पिता, घर संभालने वाली समर्पित माँ, सुंदर सा घर, मतलब टिपिकल अमेरिकन ड्रीम जैसा।
लेकिन अंदर से?
अंदर से ग्लेनन हमेशा थोड़ा अलग थलग महसूस करती थी, जैसे वो उस परफेक्ट तस्वीर में कहीं फिट नहीं हो पा रही हूँ। उनमें एक अजीब सी गहराई थी, बहुत ज्यादा संवेदनशीलता थी।
संवेदनशीलता किस तरह की?
वो बाद में खुद को कोयले की खान में कैनरी कहती हैं। जैसे वो चिड़िया जहरीली गैस को सबसे पहले महसूस करती है ना, वैसे ही ग्लेनन दुनिया की खूबसूरती और उसकी क्रूरता दोनों को बहुत तीव्रता से महसूस करती थी, और ये एहसास अक्सर उन पर मतलब बहुत भारी पड़ जाता था।
ये तो मुश्किल होता होगा।
बहुत। और यहीं से शायद वो पैटर्न शुरू हुआ मुश्किल भावनाओं से बचने की कोशिश करने का। उनके माता पिता भी शायद उस समय की सोच के हिसाब से उन्हें यही सलाह देते थे कि आसान बनो, ज्यादा महसूस मत करो, चीजों को लाइटली लो।
ओह।
तो इस अंदरूनी कश्मकश और बाहरी दबाव के बीच सिर्फ 10 साल की उम्र में उन्होंने बुलीमिया का सहारा लिया। ये एक ईटिंग डिसऑर्डर है।
10 साल की उम्र में?
हाँ, ये उनके लिए अपनी भावनाओं के तूफान को और नियंत्रण खोने का डर को संभालने का एक तरीका बन गया। उनका पहला आसान बटन, जैसा वो कहती हैं, मुश्किल भावनाओं को दबाने का एक सीक्रेट रास्ता।
इसके साथ क्या और भी प्रभाव थे बचपन में?
हाँ, पारंपरिक ईसाई चर्च का भी काफी प्रभाव था। वहाँ त्याग, दूसरों को खुश रखना, बाहरी दिखावा बनाए रखना, इन बातों पर जोर दिया जाता था। तो एक अच्छी लड़की बनने का दबाव भी लगातार बना रहता था। ये भी एक तरह का परफॉर्मेंस ही था।
मतलब छोटी उम्र से ही एक तरह का प्रदर्शन चल रहा था।
बिल्कुल, और ये चीज किशोरावस्था और कॉलेज के दिनों में जेम्स मेडिसन यूनिवर्सिटी में और बढ़ गई। बुलिमिया के साथ साथ शराब और ड्रग्स का इस्तेमाल भी शुरू हो गया। ये सब तरीके थे उस अंदरूनी शोर को, उस दर्द को शांत करने के, अपनी ही त्वचा में असहज महसूस करने से बचने के। वो इसे बाद में एक लंबा आत्मघाती प्रयास कहती हैं।
बाप रे, ये तो बहुत अंधेरा दौर लगता है।
था, लेकिन फिर एक टर्निंग पॉइंट आया। मदर्स डे 2002, बहुत ज्यादा शराब पीने के बाद उनका प्रेगनेंसी टेस्ट पॉजिटिव निकला।
ओह,
ये उनके लिए एकदम रॉक बॉटम जैसा था, लेकिन साथ ही शायद अनजाने में ये मुक्ति का एक दरवाजा भी साबित हुआ।
कैसे?
इस घटना ने उन्हें जैसे झकझोर दिया। इसने उन्हें नशे की लत छोड़ने, अपने ईटिंग डिसऑर्डर से रिकवर करने की दिशा में पहला कदम उठाने पर मजबूर किया। और फिर उन्होंने बच्चे के पिता क्रेग मेल्टन से शादी कर ली, अपनी टीचिंग डिग्री पूरी की और बाहर से एक बिल्कुल सामान्य शांत जिंदगी जीने लगी। संयम, मातृत्व, घर गृहस्थी।
तो क्या सब ठीक हो गया था?
सतह पर तो ऐसा ही लगता था, लेकिन शायद अंदर का खालीपन अभी भी था। माँ बनने के शुरुआती दिनों में वो काफी अकेलापन महसूस करती थीं, और इसी दौरान उन्होंने मॉमस्ट्री नाम से एक एनोनिमस ब्लॉग शुरू किया।
अच्छा, ये मॉमस्ट्री वाला फेज यहाँ से शुरू हुआ।
हाँ, और इस ब्लॉग पर उन्होंने कुछ बहुत अलग किया। उन्होंने मातृत्व, अपने विश्वास, नशे से उभरने की अपनी जर्नी, इन सब की कच्ची, ईमानदार और अक्सर दर्दनाक सच्चाई को लिखना शुरू किया, बिना किसी लाग लपेट के। उन्होंने इसके लिए एक शब्द बनाया, ब्रूटिफुल, मतलब ब्रूटल, क्रूर, और ब्यूटिफुल, सुंदर, एक साथ।
ब्रूटिफुल, इंटरेस्टिंग।
हाँ, क्योंकि ये वो सच्चाई थी जिसे आमतौर पर छुपाया जाता है, जिस पर पर्दा डाला जाता है।
और लोगों का रिएक्शन कैसा था?
लोगों ने उस ईमानदारी से गहरा कनेक्शन महसूस किया। ब्लॉग बहुत तेजी से पॉपुलर हो गया। ग्लेनॉन गुमनामी से निकलकर एक जानी मानी पब्लिक फिगर बन गई। उनकी पहली किताब कैरी ऑन वॉरियर न्यूयॉर्क टाइम्स बेस्टसेलर बनी। उन्होंने टुगेदर राइजिंग नाम की संस्था बनाई, जिसने जरूरतमंदों के लिए लाखों डॉलर जमा किए। उनकी पहचान बन गई सच बोलने वाली लेखिका के तौर पर। एक सफल करियर, एक सुंदर जीवन, सब कुछ इसी सच्चाई की नींव पर खड़ा दिख रहा था।
लेकिन आप कह रही थीं कि ये भी एक तरह का प्रदर्शन था।
हाँ, जैसा वो लव वॉरियर में खुद स्वीकार करती हैं, ये एक चुना हुआ, सजाया संवारा सच था। पर्दे के पीछे वो अब भी परफॉर्म कर रही थीं। किस चीज का परफॉर्मेंस? एक ऐसी पत्नी और माँ का जो परफेक्ट नहीं है, लेकिन अब ठीक हो चुकी है, शुक्रगुजार है, सबको खुश रख रही है। ये उनके प्रदर्शन का चरम था।
और ठीक इसी वक्त जब वो अपनी पब्लिक सक्सेस के पीक पर थीं।
एग्जैक्टली, वहीं से लव वॉरियर की मुख्य कहानी शुरू होती है। ग्लेनॉन और उनके पति क्रेग अपनी शादी को बचाने के लिए मैरिज काउंसलिंग में जा रहे हैं, और एक थेरेपी सेशन के दौरान क्रेग कबूल करता है कि वो अपनी पूरी शादी के दौरान, मतलब शुरू से ही, बेवफाई करता रहा है।
ओह माय गॉड, ये तो सब कुछ बिखर गया होगा।
बिल्कुल, एक झटके में उनकी पूरी दुनिया, जो उन्होंने इतनी मेहनत से बनाई थी, वो ढह गई। किताब इसके बाद के इमोशनल उथल पुथल, उस दर्दनाक सफर का ब्यौरा देती है।
उनकी पहली प्रतिक्रिया क्या थी?
उनकी पहली प्रतिक्रिया फिर से वही पुरानी पैटर्न वाली थी, स्थिति को ठीक करने की कोशिश करना। सबसे ज्यादा समझदार, सबसे ज्यादा माफ करने वाली, सबसे आदर्श पत्नी बनकर सब कुछ संभाल लेना।
लेकिन इस बार कुछ अलग हुआ।
हाँ, इस बार उन्हें गहराई से यह एहसास हुआ कि यह तो उनका जीवन भर का पैटर्न रहा है, दूसरों का प्यार और स्वीकृति पाने के लिए परफॉर्म करना, चाहे वो अच्छी लड़की बनना हो, सही ईसाई बनना हो, या अब माफ करने वाली पत्नी बनना हो।
ये एक बड़ा रियलाइजेशन है।
बहुत बड़ा। थेरेपी के जरिए, अकेले में सोचने और लिखने के जरिए, वो अपने अतीत में वापस जाती हैं, उन क्षणों को दोबारा जीती हैं जिन्होंने उन्हें अपनी सच्ची भावनाओं को छुपाना, दर्द को सुन्न करना और दूसरों के लिए परफॉर्म करना सिखाया था।
और वो उन सामाजिक संदेशों का भी सामना करती हैं।
हाँ, जिन्हें वो द मेमो कहती हैं, समाज की वो अनकही स्क्रिप्ट जो खासकर महिलाओं को बताती है कि उनकी कीमत दूसरों को खुश करने में है, परिवार को जोड़े रखने में है, अपनी जरूरतों को दबाने में है।
तो किताब का फोकस बदल गया।
बिल्कुल, किताब का आखिरी हिस्सा शादी बचाने के बारे में नहीं रह जाता, वो खुद को बचाने के बारे में बन जाता है। वो आखिरकार अपनी अंदरूनी आवाज, जिसे वो नॉइंग कहती हैं, अपना अंतर्ज्ञान, अपनी गहरी समझ, उसके प्रति सच्ची होने का चुनाव करती हैं। वो धीमी शांत आवाज जिसे उन्होंने बचपन से अनसुना करना सीख लिया था।
तो अंत में
वो क्रेग से अलग होने का फैसला करती हैं और एक अनजाने अनिश्चित भविष्य में कदम रखती हैं। लेकिन इस बार वो एक परफॉर्मर नहीं है, बल्कि एक योद्धा हैं, एक लव वॉरियर जो बाहरी दुनिया के शोर से निकलकर आखिरकार अपने अंदर के घर लौट आई है।
मूल दर्शन और मूल्य,
ये यात्रा वाकई अंदर तक असर करती है। अगर हम ग्लेनॉन डॉयल के मूल दर्शन को, उनके कोर वैल्यूज को समझने की कोशिश करें तो वो क्या हैं? मतलब क्या चीज उन्हें ड्राइव करती है?
मेरे ख्याल से उनके दर्शन का जो केंद्र है वो है दर्द को देखने का एक बिल्कुल नया नजरिया।
अच्छा, कैसे?
डॉयल के लिए दर्द कोई दुश्मन नहीं है जिसे भगाना है, न ही कोई प्रॉब्लम जिसे सॉल्व करना है, बल्कि दर्द एक पवित्र मैसेंजर है, एक ट्रैवलिंग प्रोफेसर जैसा वो कहती हैं, जो हमें कुछ बहुत जरूरी सिखाने आया है।
जबकि हमारी पूरी संस्कृति तो हमें दर्द से बचने के लिए प्रोग्राम करती है ना? वो आसान बटन देती रहती है।
बिल्कुल, चाहे वो नशा हो या बस ध्यान भटकना हो या फिर वो परफेक्शन का मुखौटा पहनना, ये सब आसान बटन है। और एक लव वॉरियर डॉयल के हिसाब से वो इंसान है जो इन बटनों को दबाने से इनकार करता है, जो हिम्मत करके अपने दर्द की आग में बैठता है, जो सीखता है सब कुछ महसूस करना बिना भागे बिना सुन्न किए।
ये आसान नहीं होता होगा।
बिल्कुल नहीं, और इसी से जुड़ा है उनका नोइंग का कॉन्सेप्ट।
नोइंग यानी जानना।
हाँ, पर ये दिमागी जानना नहीं है, ये अंदरूनी इंट्यूटिव ज्ञान है, अंतरात्मा की आवाज, वो गहरी समझ जो हम सबके अंदर होती है, लेकिन समाज, खासकर महिलाओं को सिखाता है कि बाहरी वैलिडेशन, नियम कानून, दूसरों की राय, इन सबको अपनी अंदरूनी आवाज से ज्यादा महत्व दो, उसे अनसुना कर दो। तो ग्लेनन की जो स्पिरिचुअल जर्नी है वो इसी नोइंग को दोबारा सुनना सीखने और उस पर भरोसा करके अपनी जिंदगी जीने के बारे में है। उनका विश्वास भी पारंपरिक नियम आधारित धर्म से हटकर एक ज्यादा पर्सनल, गहरी आध्यात्मिकता की ओर जाता है, जहां फोकस बाहरेश्वर पर नहीं बल्कि हमारे अपने अंदर मौजूद दिव्यता पर है। जिंदगी का मकसद बाहरी कोड के हिसाब से अच्छा बनना नहीं बल्कि अपनी अंदरूनी सच्चाई के प्रति ईमानदार होना है।
उनकी प्रेरणाएं कैसे बदली वक्त के साथ?
हाँ, उसमें एक साफ बदलाव दिखता है, तीन चरण नजर आते हैं। शुरू में प्रेरणा थी सिर्फ दर्द को सुन करना और किसी तरह सर्वाइव करना, बुलीमिया, शराब, ड्रग्स के जरिए। फिर आया बीच का दौर, ममास्ट्री वाला। तब प्रेरणा थी परफॉर्म करना, बाहरी दुनिया से प्यार और मान्यता पाना, परफेक्ट माँ, पत्नी, लेखिका बनकर।
और फिर तीसरा चरण, लव वॉरियर वाला।
हाँ, बेवफाई के उस संकट के बाद प्रेरणा पूरी तरह बदल गई। अब बाहरी अप्रूवल मायने नहीं रखता था, एकमात्र प्रेरणा थी अपनी अंदरूनी नोइंग का सम्मान करना, अपनी पूरी सच्चाई कहना, चाहे वो कितनी भी मुश्किल, कितनी भी मेसी क्यों ना हो, और अपनी आत्मा के साथ अलाइन होकर जीना, चाहे नतीजे कुछ भी हों। यही एक लव वॉरियर की असली मोटिवेशन है।
तीन निर्णायक मोड़।
हर किसी की जिंदगी में कुछ ऐसे मोड़ आते हैं जो पूरी दिशा बदल देते हैं। ग्लेनॉन डॉयल की कहानी में अगर हमें तीन सबसे अहम, सबसे निर्णायक मोड़ चुनने हों तो वो कौन से होंगे?
ये चुनना मुश्किल है, लेकिन हाँ, तीन बहुत साफ नजर आते हैं। पहला, मेरे ख्याल से 10 साल की उम्र में बुलीमिया की शुरुआत।
क्यों ये इतना अहम है?
क्योंकि ये सिर्फ एक ईटिंग डिसऑर्डर नहीं था, ये एक सिग्नल था। वजह थी बाहरी दुनिया का कन्फ्यूजन, उसका दर्द जिससे वो छोटी सी बच्ची निपट नहीं पा रही थी, और अंदर की एंग्जाइटी। इसका असर ये हुआ कि इसने जीवन भर के लिए एक पैटर्न सेट कर दिया, अंदर की उथल पुथल को मैनेज करने के लिए बाहरी चीजों का इस्तेमाल करना। यहीं से उन्होंने अपनी सच्ची भावनाओं को दबाकर एक कोपिंग मैकेनिज्म को अपनाना शुरू किया।
हाँ, ये समझने जरूरी है कि ये सिर्फ खाने की बात नहीं थी, ये भावनाओं से डील करने का तरीका बन गया था। अच्छा, दूसरा मोड़।
दूसरा अहम मोड़ था मदर्स डे 2002, जब उन्हें पता चला कि वो प्रेग्नेंट है। सालों की बढ़ती लत और सेल्फ डिस्ट्रक्टिव व्यवहार के बाद ये एक बाहरी घटना थी जिसने उन्हें ब्रेक लेने, रुकने पर मजबूर कर दिया।
तो ये एक तरह का वेकअप कॉल था।
बिल्कुल, इसने उन्हें नशा छोड़ने और रिकवरी की राह पर डाला, इसने उन्हें शादी और परिवार बनाने के रास्ते पर सेट किया। तो हाँ, ये लाइफ सेविंग था, लेकिन जैसा हमने पहले बात की, इसने अनजाने में उन्हें उनके अगले पिंजरे, वो परफेक्ट घरेलू महिला बनने के प्रदर्शन की ओर भी धकेल दिया। ये रिकवरी थी, पर शायद पूरी तरह से प्रामाणिक नहीं।
और तीसरा और शायद सबसे ज्यादा परिवर्तनकारी मोड़,
वो था क्रेग का थेरेपी सेशन में अपनी बेवफाई का कबूलनामा, वो कन्फेशन।
ये क्यों इतना बड़ा टर्निंग पॉइंट था?
क्योंकि ये सिर्फ एक राज का खुलना नहीं था, ये उस पूरी दुनिया का, उस पूरी पहचान का ढह जाना था जिसे ग्लेनॉन ने प्रदर्शन की नींव पर खड़ा किया था। इसने उनके लिए परफॉर्म करते रहना नामुमकिन बना दिया। कंट्रोल का जो भ्रम था वो टूट गया। इसने उन्हें उस कच्ची असहनीय सच्चाई का सामना करने पर मजबूर कर दिया जिससे वो शायद पूरी जिंदगी भागती रही थी,
और यहीं से उनकी असली रिकवरी शुरू हुई।
एग्जैक्टली। नशे की लत से तो वो पहले उभर चुकी थी, लेकिन अब उन्हें उस लत से उभरना था जो शायद ज्यादा गहरी थी। दूसरों को खुश करने की लत, बाहरी मान्यता पर निर्भर रहने की लत, यहीं से लव वॉरियर का असली जन्म हुआ।
क्या हम यहाँ उस द्वीप वाले मेटाफर की भी बात कर सकते हैं जो थेरेपी में आया था? वो भी काफी पावरफुल लगता है।
हाँ बिल्कुल, वो बहुत जरूरी है। थेरेपी में ग्लेनन खुद को विजुलाइज करती हैं एक छोटी लड़की के रूप में जो एक छोटे से द्वीप पर अकेली खड़ी है, और जो भी उस द्वीप पर आता है वो लड़की उसे एक नक्शा देती है कि यहाँ कैसे रहना है, क्या करना है, ताकि आने वाला खुश रहे।
अच्छा।
और उन्हें अचानक ही रियलाइजेशन होता है कि अरे, मैंने तो अपनी पूरी जिंदगी दूसरों के लिए एक परफेक्ट द्वीप बनाने में ही गुजार दी। उन्हें खुश रखने के लिए नक्शे बनाती रही। मैंने कभी अपनी खुद की जमीन, अपना ठोस आधार, अपनी मुख्य भूमि तो बनाई ही नहीं।
ये तो बड़ा गहरा एहसास है।
बहुत। और इसी एहसास के बाद वो फैसला करती हैं मेटाफोरिकली कि अब वो इस द्वीप को छोड़ेंगी। अब वो तैरकर अपनी आत्मा की मुख्य भूमि तक पहुंचेंगी। अब उनका लक्ष्य दूसरों के लिए द्वीप को मेंटेन करना या शादी को बचाना, यानी द्वीप पर टिके रहना नहीं है, बल्कि खुद को बचाना है, अपनी मुख्य भूमि तक पहुंचना है। ये उनके फोकस में एक फंडामेंटल शिफ्ट था।
मानवीय सबक और चिंतन।
ग्लेनॉल डॉयल की कहानी हाँ बहुत पर्सनल है। उनकी परिस्थितियां शायद हम में से ज्यादातर लोगों से अलग हों, लेकिन फिर भी इसमें ऐसे सबक हैं जो हम सबके जीवन से, हमारे अनुभवों से कहीं ना कहीं जुड़ते हैं।
बिल्कुल। उनकी जो यात्रा है, नशे की लत, लगातार परफॉर्म करने का प्रेशर, फिर विश्वासघात का दर्द और उससे उभरना, ये सब बहुत ही यूनिवर्सल ह्यूमन एक्सपीरियंस है ना? कौन है जिसने कभी ना कभी बाहरी दिखावा बनाए रखने के दबाव और अंदर से सच्चा होने की इच्छा के बीच खुद को फंसा हुआ महसूस नहीं किया?
सहीगा। और ये कहानी इस बात का भी एक शक्तिशाली उदाहरण है कि कैसे जिंदगी के सबसे बड़े संकट, वो पल जब लगता है कि सब कुछ खत्म हो गया, बिखर गया, वही पल असल में गहरे विकास और एक तरह के पुनर्जन्म के कैटलिस्ट बन सकते हैं।
हाँ, हम अक्सर मुश्किलों से भागते हैं, उनसे डरते हैं, लेकिन शायद वही हमें वो बनने का मौका देती हैं जो हम असल में बन सकते हैं।
और जो लोग सुन रहे हैं वो भी शायद खुद को इन संघर्षों से जोड़ पाएं। समाज की उम्मीदों का बोझ, इमोशनल पेन से बचने के लिए हम जो अलग अलग तरीके अपनाते हैं,
और अपनी सच्ची अंदरूनी आवाज, वो नोइंग, उसे ढूंढने और उस पर भरोसा करने की जो जद्दोजहद होती है।
ये कहानी कई पारंपरिक धारणाओं को भी चुनौती देती है, जैसे असली ताकत क्या है? क्या माफी हमेशा कमजोरी से आती है, या वो ताकत का भी संकेत हो सकती है? एक परफेक्ट लाइफ का मतलब क्या होता है असल में?
बिल्कुल। और सबसे बड़ी बात, ये वल्नरेबिलिटी को, यानी अपनी कमजोरियों को खुलकर स्वीकार करने को कमजोरी नहीं मानती, बल्कि उसे साहस और ताकत का स्रोत बताती है।
तो शायद सबसे बड़ा मानवीय सबक यही है कि अपनी कमजोरियों को, अपने डर को, अपनी कच्ची भावनाओं को स्वीकार करना, ये कमजोरी नहीं, यही असली ताकत है। और प्रामाणिकता, मतलब अपने असली स्वरूप के साथ जीना, शायद जिंदगी का सबसे जरूरी लक्ष्य है।
हाँ, और ये विश्वास के संकट हमें तोड़ते नहीं हैं, वो हमें फिर से बनाने का, खुद को दोबारा गढ़ने का मौका देते हैं।
तीन अंतिम निष्कर्ष।
तो अगर हमें इस पूरी बातचीत से, ग्लेनॉन डॉयल की इस यात्रा से, तीन मुख्य निष्कर्ष निकालने हों, एक इमोशनल लेवल पे, एक इंटेलेक्चुअल लेवल पर और एक यूनिवर्सल प्रैक्टिकल लेवल पर, तो वो क्या होंगे?
इमोशनल लेवल पर मुझे लगता है सबसे शक्तिशाली सबक ये है कि हमारे व्यक्तित्व के वो हिस्से जिन्हें हम अक्सर सबसे बदसूरत, सबसे डरावना मानते हैं, जैसे हमारा गुस्सा, हमारा गहरा दुख, हमारी बहुत ज़्यादा संवेदनशीलता, ये असल में कमजोरियां नहीं है, ये हमारी सुपर पावर्स हो सकती हैं।
सुपर पावर्स? कैसे?
क्योंकि ये सच्चाई के मैसेंजर हैं। इन्हें दबाने या इनसे लड़ने की जरूरत नहीं है, इन्हें सुनने की जरूरत है। इन्हें अपनाना ही आज़ादी की तरफ पहला कदम है।
अपनी भावनाओं को दुश्मन नहीं, गाइड मानना। हाँ, ये वाकई एक बड़ा शिफ्ट है सोच में।
इंटेलेक्चुअल निष्कर्ष क्या होगा?
इंटेलेक्चुअल लेवल पर मेरे ख्याल से मुख्य बात यह है कि समाज हमें जीने के लिए एक बनी बनाई स्क्रिप्ट देता है। डॉसन विल्क्स इसे द मेमो कहती हैं। खासकर महिलाओं के लिए ये स्क्रिप्ट अक्सर बहुत सख्त और सीमित करने वाली होती है। सच्ची आज़ादी तब मिलती है जब हम इस स्क्रिप्ट को पहचानते हैं, उसे क्वेश्चन करते हैं और ये समझते हैं कि ये अक्सर हमें छोटा रखने के लिए ही बनाई गई है।
अच्छा।
और फिर उस स्क्रिप्ट को किनारे रखकर हम अपनी अंदरूनी सच्चाई, अपनी नोइंग के आधार पर अपने जीवन की कहानी के लेखक खुद बनते हैं।
दूसरों की लिखी कहानी जीने के बजाय अपनी कहानी खुद लिखना। और सबसे प्रैक्टिकल यूनिवर्सल सबक, सबसे प्रैक्टिकल और यूनिवर्सल सबक शायद ये है कि दर्द और मुश्किलें, एडवर्सिटी, ये जिंदगी के अनिवार्य हिस्से हैं। ये हमारे टीचर हैं। इनसे भागना, इन्हें सुन करना या परफॉर्मेंस के पीछे छुपाना, ये सब हमारे ग्रोथ को रोक देता है। सच्ची रेजिलियंस, सच्ची मजबूती तब आती है जब हम मुश्किल भावनाओं और असुविधा का बहादुरी से सामना करते हैं। ग्लेनॉन के शब्दों में, सब कुछ महसूस करने से। यही रास्ता हमें प्रामाणिकता की ओर ले जाता है, और जैसा कि उनका मोटो बन गया है, वी कैन डू हार्ड थिंग्स।
ये वाकई बहुत पावरफुल और गहरा संदेश है। ग्लेनॉन डायल की कहानी हमें याद दिलाती है कि सबसे अंधेरी रात के बाद ही सुबह आती है, और सच्ची ताकत दर्द से बचने में नहीं बल्कि उसके बीच से गुजरने में है, उसे महसूस करने में है। ग्लेनॉन डायल की ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। हमारे अपने जीवन में वो कौन से पिंजरे हैं जिन्हें शायद हमने अनजाने में खुद बना लिया है। हो सकता है वो सामाजिक उम्मीदों के हों, या डर के, या अपनी ही तय की हुई सीमाओं के। और क्या हम उन पिंजरों में आराम से जी रहे हैं, या उनसे बाहर निकलने का साहस जुटाने की कोशिश कर रहे हैं?
फिर मिलेंगे अगले अंक में एक नई विश्वविख्यात व्यक्ति, एक नई किताब और एक नए विचार के साथ जो हमारी दुनिया को आकार देता है। ये ऑडियो सारांश आपके लिए अकत्र फाउंडेशन द्वारा प्रस्तुत है।